सभी लोग जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहले से ही हैं, और जहां से हटना चाहते हैं वहां से हट ही रहे। आप सुख में, ज्ञान में, आनंद में, मुक्ति में पहुंचना चाहते हैं। सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मुक्त आत्मा आपके अपने साथ ही ज्यों का त्यों है। आप दुख से, चिंता से, शोक से, भय से, मुसीबत से बचना चाहते हैं। तो दुख, भय, शोक, मुसीबत देने वाली चीजें वैसे ही जा रही है, कितना भी संभालो तो छूट रही है, और इसको कितना भी भूलो फिर भी साथ में ही रहता है। लेकिन बस गड़बड़ी वहां है कि पता नहीं, बस संसार से अलग होकर संसार का ज्ञान होता है, और परमात्मा में डूबने से परमात्मा का ज्ञान होता है। रात को कुछ नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, जहां जाना चाहते हैं वहां आप सब दौड़ धूप छोड़ते तो वहां पहुंच जाते आराम से। ऐसा कोई माई का लाल त्रिभुवन में नहीं मिलेगा, खाली नोएडा नहीं, खाली दिल्ली नहीं, खाली भारत नहीं, पूरा विश्व त्रिभुवन में। जो इंद्रिय के सुख का त्याग किए बिना सुखी हो सके, इंद्रियां है ना, आंख, नाक, जीभ, काम इंद्री सुनने की, इनके सुख का त्याग किए बिना कोई जी नहीं सकता। इनके सुख के आकर्षण के त्याग से सुखी होता है, और उस सुख से ही इनके द्वारा सुख की जरा सी झलक मिलती है। रात को गहरी नींद में क्या करते, क्या आंख से देखते तभी अच्छी नींद आती है? नहीं। सूंघते तभी अच्छी नींद आती? नहीं। कुछ नहीं करते, जहां आप जाना चाहते हैं वहां अपने आप हैं, दौड़ धूप छोड़ते हैं। तो मन और इंद्रियों के सहयोग से जो कुछ करोगे उसमें थकान मिलती है, और मन और इंद्रियों को छोड़कर जहां जाते हो वहां विश्रांति मिलती है, और दूसरे दिन काम करने की योग्यता आती है, फ्रेशनेस मिलती है। जितना तुम बाहर दौड़ते हो सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए, उतने ही भीतर से कंगाल हो जाते हो, और जितना तुम भीतर विश्रांति पाते हो उतना बाहर सुखी और समृद्ध होते हो, और भीतर से मालामाल। ये सिद्धांत समझ में उसी को आता है जिसके कोई सत्कर्म है और ईमानदारी से वो जो ईश्वर को चाहता है, जो संसार से सुख चाहता है वो संसार के दुखों में डूबा ही रहेगा। जो संसार से सुख नहीं चाहता क्योंकि दुखालय है, हो सके तो संसार को सुख दे दो थोड़ा बहुत, और बाकी अपने में जहां जाना चाहता है वहां चुप्पी साध लेता है, वो स्वयं भी सुखी रहता है, उसके द्वारा दूसरों को भी सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, कईयों के मनोरथ पूरे होते हैं। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंचा साधन है। आप जहां पहुंचना चाहते हो मैं वहीं हूं ऐसा समझ के आप बैठ जाओ चुप, फिर मन इधर उधर जाए, ओम, ये ओमकार मंत्र है, इसके महानता खोजने वाले भगवान नारायण स्वयं है, इसकी छंद गायत्री है, इसके ऋषि परमात्मा है, इसके देवता अंतर्यामी है, जिसके बिना हम सुखी हो नहीं सकते, वो अंतर्यामी परमात्मा देवता है, मैं उसका वो मेरा बस चुप। आप जहां जितना भी सुखी होना चाहते हैं वहीं है, ऐसा दुनिया का कोई माई का लाल नहीं कि जाने अनजाने वहाँ चुप न हुआ हो। चुप होने शांत होने के बाद ही नेटवर्क बनाने की अक्कल आई, शांत होने के बाद ही साइंटिस्ट को कुछ सूझबूझ आई। आइंस्टीन के आविष्कार हुए शांत होने से। खाना खाया कि नहीं खाया भूल जाता था इंद्रिय सुख को, खोज खोज में इतना खो जाता कि जिसका है उसी का हो जाता। आइंस्टीन आगे बढ़ गया। बच्चा प्यारा क्यों लगता है? ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा आया तो उसका प्यारा पर चला जाता है। मैं और मेरे की ममता नहीं होती है, सहज में देहाभिमान भूले बिना रहता है तो सबका प्यारा होता है, सबको खुशी देता है। और जब अहंता आ जाती है और संसार से सुखी होने की झंझट लेता है तब से वह हामी हो जाता है, बेईमान हो जाता है, कपटी हो जाता है, उससे फिर दूसरे लोग चेतते रहते। निर्दोष बच्चे से सब लोग दिल खोलकर पेश आ जाते हैं। और दोषी क्यों बनता है? कि बाहर सुख ढूंढता है, बाहर सुखी होने को अपने को खपाता है तो दोषी हो जाता है। महात्मा को सब लोग क्यों चाहते हैं? कि बाहर सुख नहीं खोजते, अंदर में जाना चाहते हैं, वहाँ पहले से ही है, उसमें शांत होते। इसीलिए महात्मा के पीछे हम दौड़ते हैं और दुरात्मा से दूर भागते हैं। तो दुरात्मा क्यों होता है? काम एष क्रोध रजोगुणात् समुद्भव। महाशन्नो महावैरी, ये जीव के महावैरी है, बड़ा दुष्ट है। काम और क्रोध दुष्ट है, जीवात्मा के बड़े वैरी है। इसी से जीवात्मा तुच्छ हो जाता है। वास्तव में जीवात्मा परमात्मा का अमृतमय पुत्र है। जैसे परमात्मा नित्य है ऐसे जीवात्मा नित्य है। जैसे परमात्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसे जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है। जैसे परमात्मा सुख स्वरूप है जीवात्मा भी सुख स्वरूप है। जैसे परमात्मा का वैभव है, पानी परमात्मा की संपदा है और अंगूर का रस परमात्मा का वैभव है, ऐसे ही भोजन जीव की संपदा है। उसमें से खून बनाना, बाल बनाना, आंखों की ज्योति बनाना, ये जीवात्मा का वैभव है। जीवात्मा इतना तुच्छ नहीं है। तुच्छ वस्तुओं को, तुच्छ विकारों को चिपकता, इसलिए तुच्छ हो गया। अगर तुच्छ वस्तुओं को, तुच्छ विचारों को, तुच्छ विकारों को न चिपके तो भगवान की वाणी है, भगवान कहते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरे वंशज हो। ब्राह्मण का वंशज ब्राह्मण होता है, जाट का वंशज जाट होता है, चैतन्य का वंशज चैतन्य होता है, नित्य का वंशज नित्य होता है। भगवान नित्य है तो जीवात्मा भी नित्य है, शरीर मरता है। अगर आप मरने वाला शरीर अपने को मानोगे तो अपने को आप दुखों में ही गिराते रहोगे। शरीर की सुविधा को अपना सुख मानोगे और शरीर की असुविधा को अपना दुख मानोगे तो दुख से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। शरीर की सुविधा असुविधा अनुकूलता प्रतिकूलता आके सपने की नहीं चली जाती, लेकिन वो आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, मैं उसका वो मेरा, उस परमेश्वर का चिंतन करके चुप्पी साधते जाओ, मिनट दो मिनट जितना जितना बढ़ाते जाओ। सुख तो आपके चरणों में, अकेला दिया जलाते हैं ना तो दिया तले अंधेरा होता है, लेकिन आमने सामने दिया होता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसे अकेले आप सुखी होने के लिए कोशिश करोगे तो अंधेरे ही अंधेरे में भटकेंगे। लेकिन भगवत आश्रय लेकर भगवान को प्रीति करते जाएंगे तो वो आनंद ही आनंद है, उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश। भगवत आश्रय, भगवत प्रीति, भगवत शांति, भगवत स्मृति और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। बेटा बड़ा हो जाए मुझे सुख देगा तो तेरे को दुख पक्का मिलने वाला है। मैं शादी करूं और पत्नी सुख देगी तो मुसीबत तेरे लिए जरूर लाएगी। किसी से सुख की इच्छा ना करो। बाहर के लोग दूसरी परिस्थितियां हमें सुख दे, ये गलती ना करो। हमें सुख चाहिए, जो जहां हमें पहुंचना है सुख स्वरूप में वो हमारे साथ है। रात को किसका आश्रय लेते तब नींद का सुख मिलता है, बोलो। सारे आश्रय छोड़ते हैं, नाक की सुगंध का आश्रय छोड़ते हैं, सेक्सी से सेक्सी, कामी से कामी, काम विकार का आश्रय छोड़ता है, लोभी तिजोरी का धन का आश्रय छोड़ता है, मोही परिवार का आश्रय छोड़ता है, निराश्रित गतक व्यथा, कोई भी आश्रय नहीं लेता, व्यथा चली जाती, रोगी के रोग की व्यथा गायब हो जाती गहरी नींद में, भयभीत का भय गहरी नींद में गायब हो जाता है। आपको जो चाहिए वहां तो आप हैं पहले से। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, आप अपने मूल की तरफ नहीं देखते इसलिए पत्ते और डालियों को सींच सींच के थक जाते हैं। अपने मूल को सींचिए, पत्ते डाली फल फूल सब हरे भरे हो जाएंगे। शरीर को सुखाकर पिंजर बना ले, ऐसी तपस्या करे, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना गत नहीं है। तन सुकाए पिंजर कियो धरे रेन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का विचार करो, आश्रय लो। टीवी का आश्रय लिया, रेडियो का आश्रय लिया, संभोग का आश्रय लिया, ये तुमको थकाने वाले, निचोने वाले, लेकिन भगवत आश्रय तुमको पोषने वाला है। संतुष्ट सततम योगी, योगी सतत संतुष्ट रहता है। यत आत्मा दृढ़ निश्चया, यत्नशील है आत्मा में और दृढ़ता से मानता है, जो मरता है वो मैं नहीं हूं और जहां मैं हूं वहां मौत नहीं है। मैं शांत आत्मा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, ये दृढ़ता से मान लो। बार बार उसका पेग पियो, भगवत शांति का, भगवत स्मृति का। युद्ध के मैदान में गीता उपदेश तो शांत जगह पे, पवित्र जगह पर, एकांत में होता है। युद्ध की घोर आपाधापी में गीता का उपदेश, कि भगवान ने ये बता दिया कि घोर कर्म, युद्ध जैसे घोर कर्म करते भी सत्य का संग हो सकता है, युद्ध जैसे घोर कर्म करते हुए भी मुक्ति पा सकता है, तो नोएडा की प्रवृत्ति में क्यों नहीं पा सकते, या दिल्ली की प्रवृत्ति में क्यों नहीं पा सकते। बीच बीच में भगवत स्मरण चालू रखो। कभी कभार चले गए कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ता के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, भीतर गोते मारते जाओ। कितना भी बिजी आदमी हो लेकिन नींद के बिना वो दूसरे दिन काम धंधा नहीं कर सकता। दो चार दिन अगर जगा रहे तो बेकार बन जाएगा। नींद करने से तमोगुण का आश्रय होता है, फिर भी थकान मिटती है और दूसरे दिन काम करने के लायक होते। लेकिन भगवत चिंतन करके, ध्यान करने से, नींद करने से शरीर स्वस्थ होता है और भगवत ध्यान करने से आप स्वस्थ हो जाते हैं। शरीर का स्वास्थ्य जितना जरूरी है उससे 10 गुना अपना स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है, और अपना स्वास्थ्य होगा तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा औषधियों की, टॉनिकों की ही, ज्यादा बादाम पिस्ते माजूनों की जरूरत नहीं पड़ती। वे लोग अनजान है जो सर्दियों में बादाम खाएंगे, खूब काजू खाएंगे, बाद में किडनी का प्रॉब्लम हुआ, हार्ट का हुआ। अरे 5 से 7 काजू या बादाम से अधिक पचा नहीं सकते, किडनी पे फिर लोड पड़ेगा। वैसे कि नहीं खा खा करना ये स्वास्थ्य की निशानी नहीं। ऐसे ही संसार में पशु की नहीं, संसार में दौड़ते रहना सुख के लिए, ये मनुष्यता नहीं है। कौन से पशु संसार में सुखी हो गए, कौन से मनुष्य संसार में सुखी हो गए? सुख बाहर नहीं है। गहरी नींद में कौन सी चीज बाहर की होती है जो आप सुखी हो जाते हैं? कोई चीज नहीं है, किसी चीज का आश्रय नहीं है। तिजोरी भूलनी पड़ती, बोलो। तिजोरी के पैसे या देश परदेश की करेंसी याद रहे तो आप पागल हो जाएंगे, नींद नहीं आया किया 2-4 दिन तो वैड़े हो जाएंगे। तो संसार का आश्रय तुमको थकाता है और भगवत आश्रय तुम्हारी थकान मिटाता है। नींद में भगवत आश्रय है लेकिन अनजान में है, और सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा जानकर भगवत आश्रय लो, बेड़ा पार हो गया। बस तो आप जहां पहुंचना चाहते वहां हैं आप। कोई चाहता है कि मैं दुखी रहूं, मैं अशांत रहूं, मैं मर जाऊं, फिर जन्म मिले और जन्म मिले न मिले और किसी के गर्भ में आऊं और फिर नाली में बह जाऊं, ऐसा कोई चाहता है क्या? नहीं चाहते। फिर भी बहने वाली चीजों को प्रेम करते तो फिर जन्मते रहते, बहते रहते नालियों में, गटरों में। मेरे दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, क्योंकि मेरे शरीर से पैदा हुए। शरीर से जो खाली तीन बेटे पसार नहीं हुए, कई पसार हुए, नाली में चले गए। इस बात को मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? शरीर से बेटे पसार हुए, मेरे बेटे हैं तो दो ही पसार हुए क्या जीवन में? कई बेटे आए, निकल गए नालियों में, बेटियां आई नालियों में निकल गई। मेरा दो भाई है तो तेरे कई भाई नालियों में बह गए। बहने वाली चीजों को प्रेम करोगे तो बार बार जन्मना और बहना रहेगा, और शाश्वत को प्रेम करोगे तो आपका तो भला हो जाएगा, आपका दर्शन और आपकी वाणी भी लाखों करोड़ों लोगों का भला करने वाली हो जाएगी। आप ऐसे हैं, अब संध्या की वेला है, ठीक से बैठ जाओ शांत। जो सुना, मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे, संसार में संसार का जो सुख चाहता है वो डूबता है, लेकिन संसार से सुख नहीं चाहता, प्रभु में प्रीति करता है, वो संसार से तरता है। इतना पक्का करो थोड़ी देर। सुख लेने की वासना छोड़कर सुख दे दो और आप अंदर में आनंदित हो जाओ। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर कहा कि माधव, माधव अर्थात मधुरता देने वाले, मधुमय आत्मा में रमण करने वाले और सारी चीजों को मधुरता बख्शने वाले माधव, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष आज है कि एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या फल है। तब भगवान नारायण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, शुक्ल पक्ष की, मार्गशीर्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। नरकों में जो पितर दुख भोग रहे हैं उनकी एकादशी का व्रत करके उनको पुण्य अर्पण करने से उनकी सदगति होती है और वे कुल खानदान को आशीर्वाद देते हैं, उनको मदद रूप होते हैं। इसका श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। ध्यान से सुनो, चंपानगर में राजा वैखासन राज्य करता था, बड़ा शूरवीर था, बड़ा बहादुर था, कर्मठ था, साधु संत ब्राह्मणों में, श्रेष्ठ पुरुषों में आदर बुद्धि उसका स्वभाव था। वे लोग हलकत हैं जो श्रेष्ठ पुरुषों का संग नहीं करते। वैखासन बुद्धिमान था, हलकट विकारी संग से अपने को बचाना और श्रेष्ठ जनों का संग करना वह जानता था। ऐसे राजा को एक प्रभात स्वप्न आया और स्वप्ने में अपने पिता, माता, पितामह आदि पितर नरकों में दुखी हो रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि वैखासन जैसा पुत्र पाकर भी हम नरकों में दुखी हैं बेटे, हमारे लिए तुम कुछ करो, अब पीड़ा सही नहीं जाती। हमारे प्यारे लाल वैखासन, कर्म करते समय तो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, खाना पीना शराब कबाब संभोग आदि मजा लेते लेते हम तो सजाओं के शिकार बन गए और नरकों में पच रहे। अब तुम हमारे उद्धार के लिए लाल कुछ प्रयत्न करो। सज्जन बेटे के आगे पिता मदद मांगे, माता दुखड़ा रोए, बेटा चुप कैसे रह सकता है, निश्चिंत कैसे हो सकता है। बेटा अर्थात वो राजा चौकन्ना होकर प्रभात को उठ गया, विचार करने लगा कि प्रभात का स्वप्न सत्य होता है। नहा धोकर अपना सूर्य को अर्घ दिया, थोड़ी देर भगवत चिंतन ध्यान किया, फिर ब्राह्मणों को आदर से बुलाकर स्वप्ने की सारी बात कही। श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठर, ब्राह्मणों ने कहा कि राजन तुम्हारे पितर नरक में पड़े हैं और तुमसे वो मदद मांगते हैं। तब राजा ने कहा कि मेरे जैसा पुरुषार्थी पुत्र होने पर भी मेरे माँ बाप नरक में पड़े, ये मुझसे कतई सहा नहीं जाएगा। तुम जो भी बताओगे मैं उद्योग करूंगा, उनकी सदगति का उपाय बताओ। बुद्धिमान ब्राह्मणों ने कहा कि हमसे ज्यादा जानकार हैं वो पर्वत मुनि, एकांत अरण्य में रहते हैं और जिसको पाना है वो अपने साथ है, ऐसा समझकर भगवत शांति भगवत ध्यान और भगवत रस में सराबोर रहने वाले पर्वत मुनि त्रिकाल ज्ञानी है। उनका बताया है उपाय राजन आपके लिए और लोगों के लिए मंगलकारी होगा। राजा आदर सहित पत्र पुष्प आदि लेकर भेंट पूजा दक्षिणा लेकर पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर ने संकेत दिया आशीर्वाद का, बैठे, राजन कैसे आना हुआ। वैखासन ने पूरे सपने की बात सुना दी। तब मुनिवर जहां जाने से ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का सामर्थ्य मिलता है, मुझ कृष्ण को लोगों को आनंदित करने की सत्ता सामर्थ्य आता है। पर्वत मुनि उस परमात्मा में तनिक शांत हो गए। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। मान को जो सच्चा नहीं मानता अपमान को भी सच्चा नहीं मानता, ठंडी और गर्मी को भी, ये निगुड़िया आने जाने वाली, इनको जानने वाले परमात्मा आत्मा को जो सत्य मानता है, ऐसे पर्वत मुनि उस आत्मा परमात्मा में शांत हुए और प्रसन्न वदन बोले कि उपाय मिल गया है। वैखासन चिंता ना करो, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के प्रभात को अथवा दशमी की रात को संकल्प करना कि कल सुबह मुझे एकादशी का व्रत करना है, दशम को कम खाना और एकादशी को सुबह नींद में से उठकर संकल्प करना कि आज मैं मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत। पर्वत मुनि ने कहा कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी पितरों का मंगल करने वाली है और मनुष्य के कई जन्मों के पाप मिटाकर शरीर के रोग के कणों को भस्म करके आयु आरोग्य पुष्टि देने वाली और पितरों को सदगति देने वाली है। हे चंपानगर नरेश, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने अपने पितरों के मंगल के लिए जो पूछा है वो लोक मांगल्य की बात सभी के हित में है और तुम ऐसे ऐसे व्रत करना और एकादशी की रात्रि को भगवान का अर्घ्यपाद आदि से पूजन करके कीर्तन वाद्य ताल आदि से भगवान की आरती और भजन कीर्तन नृत्य आदि करके उल्लसित वातावरण करना, दिन में भी कम बोलना सारगर्भित बोलना और एकादशी के दिन अन्न का त्याग करें और फल भी अत्यंत सूक्ष्म लेना हो तो ले बस। इस प्रकार तुम एकादशी का व्रत संपन्न करके जल ले लेना हाथ में, और मैंने जो ये व्रत किया है मोक्षदायक एकादशी का फल मेरे पितरों की सद्गति के लिए मैं अर्पण करता हूँ, फिर वो जल तुलसी में अथवा जलाशय में डाल देना। संकल्प में बड़ी शक्ति है, संकल्प को सक्रिय करने के लिए कोई न कोई चीज वस्तु या क्रिया की जरूरत पड़ती है, ये कर लेना। श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर फिर क्या हुआ, जब एकादशी का व्रत पूर्ण करके बारस को चने लेकर सात पीछे फेंके, सात चने लेकर व्रत खोला, भुने हुए चने, अंजलि ली, कुल्ला किया, सूर्य नारायण को अर्घ्य देके सूर्य के सामने बगल दिखे ऐसे दोनों हाथ ऊंचे कर दिए कि मेरे पितरों की सदगति हो, हे भगवान सूर्य मैंने जो एकादशी का व्रत किया है वो मेरे माता पिता दादा परदादा आदि जो भी मेरे पितर हैं, जो भी नरकों में दुखी हैं, आप के सपूत हैं यमराज, मैं यमराज को भी प्रार्थना करता हूँ, आपको भी प्रार्थना करता हूँ, और ये एकादशी का पुण्य फल उनकी सद्गति के लिए समर्पित करता हूँ। युधिष्ठर, चंपा नरेश का ऐसा करना, पुष्पों की वृष्टि हुई और देखते देखते आकाश में उनके पिता और पितर आकर स्थित हुए। वैखानस, तुम्हारे एकादशी व्रत से, भगवत सुमरण से, भगवत शांति से हमारी सद्गति हुई है, पुत्र तेरा कल्याण हो, तेरा यश चिरस्थाई हो, ऐसा करते वे फिर आकाश में अदृश्य हो गए। जैसे भगवान रामचंद्र जी रावण को ठिकाने लगाकर लौटे थे और फिर सुबह के समय धारणा ध्यान करके जो भी कुछ पूजा कर रहे थे, आकाश में उनके पिता दशरथ उनको दर्शन दिए थे राम जी को, बेटे राम मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। दशरथ ने कहा, स्वर्ग से आए दशरथ। तब रामचंद्र जी गदगद कंठ भरी आंखों से हाथ जोड़ते हुए अपने पिताश्री को कहते, पिताजी आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक ही वरदान चाहिए। हाँ मांग लो राम, आपने माँ कई कई को कहा था मैं तेरा त्याग करता हूं। धर्मात्मा पति पत्नी को कह दे मैं तेरा त्याग करता हूं तो उसकी सदगति नहीं हो सकती। आप मेरी माँ को जो कह देते, जो कहे थे वो वचन आप वापस लीजिए और उन्हें क्षमा करके मानसिक रूप से उनकी सद्गति का भाव करें। राम जी का परोपकार से भरा हृदय जंगलों में नंगे पैर 14 वर्ष भेजने वालों के प्रति भी अंदर में कुभाव नहीं और उसका भी भला चाहने के सद्भाव से दशरथ का हृदय पुलकित हो गया। राम तुम धन्य हो, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही होगा। दशरथ अंतर्धान हो गए। आप जब अच्छा काम करते तो वो अंतर्यामी परमात्मा भीतर प्रसन्न होते हैं और बुरा काम करते हैं तो भीतर से नालक देते। माँ इतनी इतनी प्रसूति की पीड़ा सहती लेकिन बच्चे का दर्शन करने मात्र से माँ की पीड़ाएं माँ भूल जाती और बच्चे का लालन पालन और अपने शरीर का सार तत्व दूध उसको पिलाती। बच्चा रोता है, गंदा करता है, गीला करता है, फिर भी माँ बुरा नहीं मानती और अति बच्चा परेशान करे तो माँ कभी कभी कह दे कि अरे तूने तो आफत कर दी, तो कोई आ जाए माँ को कह दे कि ये आफत जन्म देते समय भी आफत इसने दी तुमको, गर्भ धारण करने में भी इतनी मुसीबत दी, अभी भी मुसीबत दे रहा है, तो लाओ माँ ये बेटे का बच्चे का गला घोंट दूं, क्यों तुम माँ क्या गला घुटवा देगी अपने बालक का? नहीं नहीं, सारी आफतें सह रही है, सारे कष्ट सह रहे हैं, क्योंकि बच्चे के पालन करने का माँ को रस आता है। माँ बुलाती रहे और बेचारा भटकता रहे तो माँ नाराज होगी, लेकिन बच्चा आए टाइम से और माँ को कह दे माँ मैं तेरा हूँ, मैया मुझे खाना दे, माँ मैं तेरा हूँ, ऐसा करके माँ को स्नेह करे तो माँ की सारी पीड़ाएं और सारी आफतें आनंद में बदल जाती है। ऐसे ही भगवान को कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ प्रभु मैं तेरा हूँ, तो भगवान आनंदित होंगे। और आपको जैसे माँ बालक को हृदय से लगाती है, ऐसे जीवात्मा को परमात्मा अपने हृदय से लगाएंगे। दार्शनिकों में मतभेद हो जाता है, नेताओं में मतभेद हो जाता है, सेठों में मतभेद रहता है, सिद्धांत अलग अलग, लेकिन जिसको भगवान प्यारे हैं और जो भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं, उनके बुद्धि में मतभेद नहीं टिकता। और वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ, भगवान के द्वार पर भगवान की नजरिया में वह महात्मा बन जाता है और दुर्लभ हो जाता है। इंसान के लिए दुर्लभ चीज तो ठीक, देवताओं के लिए दुर्लभ चीज तो ठीक, लेकिन भगवान के लिए भी वो दुर्लभ हो जाती। भगवान कहते हैं मैं तो सुलभ हूँ, लेकिन सब में मुझको मानकर मुझसे एकाकार होने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ बनने के लिए कोई परिश्रम नहीं है, कोई इंतजारी भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, केवल भगवान को प्रीति पूर्वक अपना मानना है। किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा किसी को बुरा न कहो, किसी का बुरा न करो तो आप हो गए भले। भलाई करने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बुराई से बचने वाला तो दुर्लभ हो गया। तो आपने किसी की बुराई नहीं की, बुरा न बोला न चाहा न किया, हम बुरे कर्मों से बचे विकारों से, तो आप हो गए भले। और भले तो भगवान भले आदमी के हृदय में तो प्रकाशित होने के लिए इंतजार कर रहे। जैसे माँ अपने बेटे को ठीक श्रेष्ठ बनता हुआ देखने का तो इंतजार करती है, ऐसे भगवान की माँ की भूख मिटानी हो तो आप श्रेष्ठ बन जाइए, माँ की भूख मिट जाएगी। ऐसे भगवान की भूख मिटानी हो तो भगवान को प्रीति करे और संसार से सुख की भीख ना मांगे, उसको सुख देते जाए। जो संसार से सुख की भीख मांगता है वो संसार के दुखों में डूबता है, और जो संसार को सुख दे डालता और सुख स्वरूप में गोता मारता है वो संसार से तर जाता है। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुप्यान्ति ते। लोग मंदिरों में तो जाते लेकिन भीख मंगे होकर, ये दे दे, तो भगवान से भी दुनिया की चीज उनको महत्वपूर्ण लगती। भगवान प्यारे नहीं लगते, लेकिन मिटने वाली मरने वाली छूटने वाली वस्तु प्यारी लगती। मुझे नौकरी दे दे, मुझे धंधा दे दे, मुझे प्रमोशन दे दे, मेरे शत्रु की टांग तोड़ दे, मतलब नश्वर में ही तू कर, हमारा तू चेला बन जा, सेवक बन जा। और हम नाश की वस्तु को चाहते चाहते मरे और जन्मे नाश होते जाए और तू हमारी इच्छा पूरी करते जाए। भगवान दयालु होते हुए भी कई बार भगवान दया नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि जब आप संसार की मुसीबत भगवान से चाहते हैं मांगते हैं तो उस मुसीबत देने की भगवान दया नहीं करते। संसार के भोग चाहना, ऐश चाहना, ये मुसीबत चाहना है। जब आदमी मुसीबत चाहता है तो मुसीबत देने की भगवान दया नहीं करते। और जब आप भगवान से अपना कल्याण मांगते हैं तो भगवान अपना कल्याण तुम्हारा करने में देर नहीं करते। तो भगवान मैं नहीं जानता हूँ कि क्या मुसीबत और क्या कल्याण है। नारायण आप वही करिए जो आपको अच्छा लगता है। प्रभु मेरा हो सो जल जाए, मैं कई बार बोला भगवान को और भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तभी लोग बापू बोलते, नहीं तो कोई बेटा बहन बोलने के लिए भी तैयार नहीं। अभी तो बापू बोलकर आनंदित हो रहे, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। मेरा होशो जल जाए। मेरा क्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, चिंता है और संसार की आया है, और क्या है मेरा। मेरा होशो जल जाए, तेरा होशो रह जाए। मैं तो अकेले में यही कह देता हूँ प्यारे को, मेरी अपनी इच्छा हो सो सब जल जाए, तेरी इच्छा हो तो होता रहे महाराज। मेरा हो तो जल जाए, मेरी इच्छा वासना जो हो जल जाए। अरे अपने मन से तो हम करोड़ों जन्मों तक मांगते आए, भीख मांगे और चाहते आए, और वो सब छूटता गया और गर्भ में लटकते आए। मेरी इच्छा वासना मेरा हो सो जल जाए, हरि का हो सो रह जाए। प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। शराबी की इच्छा पूर्ण होगी तो आपको शराबी बनाएगा। शराबी की इच्छा किस में पूर्ण होगी, आप शराबी बन गए। जुआरी की इच्छा पूर्ण किस में होगी, क्या आप जुआरी बन गए। अफीमची की इच्छा कब पूरी होगी, क्या आप अफीमची बन गए। और भगवान की इच्छा कब पूरी होगी, कि भगवान मुक्त आत्मा है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आप भगवान की इच्छा पूरी हुई तो आप भी वही हो जाओगे महाराज। दोनों हाथ में लड्डू। अपनी इच्छा छोड़ते जा और भगवान की इच्छा में सहमत होते जा। अरे बाबा ये संसार में पच पच के मरते फिर भी दुख मिटता नहीं, और वहां सुख मिटता नहीं और दुख टिकता नहीं। भगवान तो भगवान है और वो नित्य है। संसार पहले नहीं था, ये शरीर आपका पहले नहीं था, माताएं बहने ये शरीर आपका नहीं था, बेटियां देवियां, और बाद में नहीं रहेगा। लेकिन आपका परमात्मा आत्मा पहले था, लालियां बेटियां अब भी है, और शरीर मर जाएगा। पति जिंदा है तो वो भेजने में भाग करेगा शमशान में, नहीं तो बेटे कंधा बंधा देके आग दे दे। चाहे बेट पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी कुटुंबी हो, कोई तुम्हारे शरीर को रखने वाला नहीं। संसारी तुम्हारे शरीर को संभाल नहीं सकते और परमात्मा तुमको छोड़ नहीं सकते। लल्ला लल्लिया बेटे, जो तुमको छोड़ नहीं सकते उसको अपना मान लो। बस मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जो तुमको कभी छोड़ नहीं सकते उसको तुम अपना मान लो, और जो तुमको सदा रख नहीं सकते उनकी सेवा करके ममता हटा लो। बस ममता करो तो ऐसा कभी ना सोचो, देखो बेटे को ऐसा ऐसा किया, मेरे को देखो ऐसा करता, बेटे ने ऐसा दिया, सेवा नहीं किया। नहीं नहीं, बेटे के तरफ से आप ना चाहो, माँ के तरफ से ना चाहो, पिता के पति के, कोई ऐसा कर दे ऐसा कर दे, नहीं वो करने का रहने वाला तू, आप अपना कर्तव्य पाल लो, वो ये कर दे मेरे लिए, वो कर दे, ये फरियाद मत कर, अच्छा है नहीं करते तो आ सकती गई तो फिर खाएंगे क्या। अरे खिलाने वो क्या खिलाते, ये शुक्र करके वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाते है। कौन किसको खिलाता है, कौन किसको पालता है, पालने वाला तू ही है, खिलाने वाला भी तू ही है, पचाने वाला भी तू ही है, और अन्न जल बंद होता है तो फिर खाना खराब करने वाला शरीर का तू है। लेकिन अपने को जीवात्मा को कभी छोड़ता नहीं, शरीर का खाना खराब कर देता है, शरीर की नींद आराम कर देता है, शरीर का जीना आराम कर देता है। ये भी आपकी कृपा है महाराज, शरीर की आसक्ति मिटाने के लिए ये आपके दुख रूपी देवता भेजते हो, और अपना सेवा करने के लिए सुख और सुविधा रूपी देवता भेजते हो दूत। महाराज ये दूत भेजकर भी आप हमें अपने चरणों में अपने प्रीति में लगाना चाहते हो, लेकिन महाराज हम तुम्हारे से प्रीति नहीं कर पाते इसीलिए दुख भोग रहे महाराज। हरि गोविंद गोपाल जो नाम अच्छा लगे सभी नाम भगवान सभी भाषाएं जानते। ऐसी कोई ब्रह्मांड में भाषा नहीं जो भगवान नहीं जानते, क्योंकि सारी भाषाएं जहां से निकलती वहां भगवान मूल में है। सारे तरंग जहां से उत्पन्न होते वो पानी मूल में है। हे माधव हे गोविंदा हे अच्युत हे केशव हे प्रभु हे मेरे रब। कमरे में बंद होकर कभी कभी पुकारो, कभी नाचो, कभी रो, कभी हंसो, कभी सिर पटको उसके लिए के महाराज ये ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ ये परपंच में पच रहा हूँ, मैं तेरा हूँ तू मेरा है अभी तक मैं नहीं जानना हूँ, महाराज दया कर दो। हरि हरि हरि। झूठ मूठ में भी प्रार्थना करते करते भगवान मान लेंगे कि चलो झूठ मूठ में भी मेरी प्रार्थना तो कर रहा है मेरा लाल, आ जा। तेरे बाप की जय, हमारी जय भाई मत बोलो, हम तो तुम्हारी जय देखना चाहते मेरे भैया मेरे बेटा लला लालिया। मेरी जय की मुझे जरूरत नहीं, मैं अपनी जय करवाने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे देव की जय देखने आया। बस आप पक्का कर लो, बस दृढ़ निश्चय कर लो कि मनुष्य जीवन अब व्यर्थ नहीं जाएगा। मर तो जाएगा शरीर, मरने वाला ही बात पक्की है। शरीर मरे और फिर जन्म ले, जन्म मिले न मिले और किसी के गर्भ में लटके, फिर क्या पता गाय बने घोड़ा बने गधा बने। कहां तो राजा भरत जिसके नाम से अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा, ऐसा भरत हिरण का चिंतन करते करते मरे तो दूसरे जन्म में हिरण हुए। कुत्ते का चिंतन करते करते मरा तो कोई कुत्ता हो जाता है। सांप का चिंतन करते मरे किसी वैर भाव है तो दूसरे जन्म में राजा मृग अजगर बन वो क्रिकेट बन गए, राजा अजगर बन गए। अरे भगवान कितने अपने को भगवान ने कितना सस्ता बना दिया है। जिस मूल्य में कुत्ता का शरीर मिल जाए, जिस मूल्य में हिरण का शरीर मिल जाए, जिस मूल्य में अजगर या क्रिकेट का शरीर मिल जाए, माम अनुसुम्र मेरा सुमरण करो तुम मुझे मिल जाओगे। युद्ध कर लेकिन सुमरण तुम मेरा कर। तुम माताएं बहने मेरी बिटिया लालियां तू भगवान का सुमरण बढ़ा दो। भगवान का सुमरण बार बार, जगत के सुमरण में दुखी हो जाओगे थक जाओगे, संसार तुम्हें नीचो देगा, बुढ़िया हो जाओगे बुढ़े हो जाओगे कोई पूछेगा नहीं। लाचारी के दिन आए उसके पहले लाचारी मिटा लो मेरे लल्ला, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। पराधीनता के दिन आए उसके पहले स्वाधीन हो जाओ, स्व परमात्मा के अधीन हो जाओ। किसकी बात देखते हो, कौन आएगा क्या कर देगा कि दुख मिट जाएंगे और सुख सुख हो जाएगा। कोई बाहर का पिशमार खान आ जाए, फलाना राजा आ जाएगा फलाना नहीं आ जाए। अरे त्रेता में राम जी आए लोगों के दुख मिटाने लगे, और राम जी आए फिर उसके बाद फिर द्वापर आया, और फिर कृष्ण जी आए दुख मिटाने वाले हैं, और लोग कृष्ण जी मिटा मिटा के कृष्ण जी गए तो फिर कलयुग आ गया और बुरा हाल। राम जी के बाद फिर कृष्ण जी आए, कृष्ण जी के बाद भी दुनिया तो ऐसी, फिर कलयुग आया और कलयुग में इतनी महंगाई इतनी बीमारियां इतनी लूट खसोट ये सब कलयुग के दोष। अभी तो समय बड़ा बुरा आ रहा है। बस भगवान की भक्ति ही बुरे समय से सबकी रक्षा करेगी। इसलिए मैं इस उम्र में इतना व्यस्त रहकर भी सारी जगह इन बुराइयों से बचने का सुंदर उपाय है कि भगवत प्रीति, भगवान के निमित्त सत्कर्म, भगवान के निमित्त भगवान का सत्संग। नारायण हरि। बच्चों में भी ये संस्कार डालते तो बच्चों की जिंदगी में भी बड़ी बरकत आती, बड़ों में भी बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए आने वाले युग के खतरे हट से जा रहे हैं और भारत फिर उज्जवल भविष्य की तरफ चला जा रहा है, ऐसे भी कई संकेत मिल रहे दिख रहे उज्जवल भविष्य की तरफ। जब जब भगवान का आश्रय लेकर निष्काम भाव से कोई महात्मा ने काम किया है सेवा, तब तक युग में थोड़ा समाज में थोड़ा सुखद आनंददायी वातावरण हुआ। अब जब जब किसी ने अहंकार करके मेरी गद्दी मेरी कुर्सी मैं बड़ा तब तबाही हुई, चाहे रावण कौन सो हो, मैं बड़ा वो मुसीबत बढ़ाते हैं। मेरा तो ये शरीर पानी की बूंद से तो पैदा हुआ है और राख बन जाएगा तो कब्र में मिट्टी बन जाएगा। मैं बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा, गॉड बड़ा, ईश्वर बड़ा, जिसकी सत्ता से आंखें देखते वो परमात्मा बड़ा है और वो मेरे आत्मा होकर बैठे, बस इतना मान लो ना। अपने अहंकार की जगह पर भगवान की सत्ता स्वीकार कर लो। विकारी सुखों काम क्रोध लोभ मोह की जगह पर शांति आनंद और भगवत विश्रांति पाना सीख लो। आपका तो भला होगा, लेकिन आप जो श्वासोश्वास और रोमकूप से वातावरण का भी मंगल हो जाएगा। जीभ को हिलाने की मेरी ताकत नहीं है, वो परमात्मा की सत्ता से जीभ हिल रही है, तो मैं दुनिया का मंगल करने वाला कौन आ गया, बड़ा बापू का बाप बच्चा। मैं कोई मंगल नहीं करता हूँ, मेरा कुछ नहीं किया कराया, करण करावन हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी महाराज। देने वाला दे रहा दिन और रैन लोक मुझे, दानी कहे उस लिए नीचे नैन। कोई धर्मात्मा दान पुण्य करता है, लोग बोले बड़े धर्मात्मा है, तो सिर झुक जाता उनका। बोले आप क्यों सिर झुका देते हैं? बोले देने वाला दे रहा है दिन रहन, मैं तो उसकी चीजें उठा उठा कर बांट रहा हूँ और लोग मुझे दानी कह रहे। श्वास लेने की सत्ता भी उसी की है, शरीर भी उसी ने दिया है, चेतना भी वही दिया, सद्बुद्धि भी वही दिया, देने वाला वही दे रहा है दिन और रहन, और लोग मुझे बोलते ये दानी है, बिल्कुल। मैं तो शर्म के मारे सिर झुका के बैठ जाता। बच्चे की नजर 3 उंगल तक की होती, बस किसी का जो देखा जीभ को स्वाद आया खा लिया। बड़े की नजर 3 हाथ तक होती है, शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल करके खाएगा। साधक की नजर 3 जन्म तक की होती है, ऐसे कर्म करूं कि अगले जन्म के संस्कार मिट जाए और यहां सुख दुख में सम रहूं, मान अपमान को सपना समझूं, लाभ हानि को सपना समझूं, परमेश्वर को अपना समझो और मरने के बाद किसी के गर्भ में ना भटकूं, आत्मा परमात्मा को जानकर मुक्त आत्मा हो जाऊं। ये साधक की नजर है। और सिद्ध की नजर, जो बापू बन गए ब्रह्मवेता बन गए, उनकी नजर ये है कि संसार सपना, जो पहले था अब भी है और बाद में रहेगा, वही स्वरूप अपना। उनकी नजर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष गुरुवर कार्य रहे, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवले, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लगली, पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साई आशारा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखे ब्रह्मानंद का आनंद, जागृत आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, लेकिन जो कभी गया नहीं वही मेरा आत्मा परमात्मा है, नित्य स्वरूप है। और जो महापुरुष जानते हैं, नानक जी जो जानते हैं अपने को आत्मा, वही तो आत्मा तुम अभी भी हो, उन्होंने जान लिया तो ब्रह्मज्ञानी बन गया, और तुम जानना बाकी है तो साधक हो, और नहीं जानते तो संसार में फिर गोते खाने पड़ेंगे। गीता का जन्म दिवस भले मनाते हैं, लेकिन गीता का जन्म नहीं हुआ, अवतरण हुआ है, अवतरित हुई है गीता। गीता संसार में श्रेष्ठ ग्रंथ है, वेद वेदों का सार निचोड़ है उपनिषद, और उपनिषदों का सार है भगवत गीता, और भगवान श्री कृष्ण के हृदय रूपी रिफाइनरी से वे वचन आए। गीता श्रुति नहीं है, स्मृति ग्रंथ। श्री कृष्ण को जो अमृत की स्मृति हुई है, मानव जात के लिए छलका है, वह गीता है। तो कथा कीर्तन रात दिन, जिनका उद्यम ये कह कबीर वा संत की हम चरणन की खेर, तो गीता है, रामायण है, संतों के अनुभव की वाणी है। तो जैसे गीता मेरा हृदय है, ऐसे संतों और भगवान के ग्रंथ, भगवान के वचन जिन ग्रंथों में है, वहाँ भगवान और संत का हृदय है। जहाँ संत का हृदय है वहाँ संत समागम हो गया। तो सत साहित्य अथवा आजकल तो वीडियो सीडी ऑडियो आदि है, तो सत्संग हुआ तो संत समागम हो गया। और सत्संग में हरि की कथा है, और क्या है, कोई शेर बाजार की बात थोड़ी है, सोने चांदी की कथा थोड़ी है, हरि की कथा है। तो जहाँ सत्संग रोज सुनते हैं अथवा सत शास्त्र पढ़ते हैं, वहाँ संत समागम और हरि कथा हो जाती। विवेकानंद बोलते हैं, जिनके घर में सत साहित्य नहीं है, वो अपनी घर की दीवारों पे लिख देना कि हमारा घर शमशान है। देखो गांधी के जीवन में गीता थी और भगवान आश्रयदा मां मनुस्मर युद्ध से, गांधी जी भगवान का स्मरण करते थे और युद्ध करते थे। गांधी जी युद्ध में सफल हो गए, अंग्रेजों के साथ युद्ध करना और निहत्थे गांधी की विजय। गीता का ज्ञान और भगवत आश्रय, बस दो ही चीजें हैं। पांडवों में 105 थे, एक भी मरा नहीं। कौरवों के 100 थे, एक भी बचा नहीं। ये धर्म का आश्रय लिया पांडवों ने। आप भगवत आश्रय लो, अपना पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ में भगवान की कृपा मानो, भगवान का बल मानो। अकेला अपने पुरुषार्थ से अहंकार और विफलता आएगी, सफलता आएगी तो अहंकार उनको भी विफल कर देगा। भगवत आश्रय से अपना पुरुषार्थ करोगे तो उसमें श्री वैभव और विजय, बाहर भीतर, अंदर से भी तृप्ति, बाहर से भी तृप्ति। भगवत आश्रय, बेटे ने कहा माँ मैं तेरा कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं या तेरी सेवा करूँ, तूने मेरे को बचपन में बहुत खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि मेरी चमड़ी की जुतियाँ बनाकर तुझे पहनाऊँ माँ, तो मैं तेरे कर्ज से मुक्त हो जाऊँगा। तो माँ हंसने लगी, बोले माँ क्यों हंसती, बोले बेटा ये चमड़ा भी तेरा नहीं है, मेरे शरीर में ही बना था, ये भी तो मेरा दिया हुआ है। ऐसे कोई बोले भगवान की मैं सेवा करता हूँ, मैं धर्म ग्यारे, लेकिन जो भी दिया है तो भगवान ने ही तो दिया है, भगवान पे क्या मेहरबानी कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा है कि अपनी ममता हटाने के लिए हम कह रहे हैं कि भगवान को अर्पण है। बाकी तो ना बोलो तभी भी सर्वा कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञान न परिसमापित, सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जिस किसी की सेवा करते उसकी गहराई में सेवा का भोक्ता तो भगवान ही है, और फलदाता हृदय में भगवान ही है। जिसको हटाना चाहो हट नहीं सकता, छोड़ना चाहो छोड़ नहीं सकते, उसको अपना मानने में क्यों देरी करना। अपनी माँ अपनी है तो है, और कुल्टा से अपना क्या लेना देना। ऐसे ही माया तो है कुल्टा, शरीर भी कुल्टा का दिया है, वो रहा हुआ नहीं है, रहेगा नहीं, इसको जरा ठीक ठाक रखो, बाकी तो कुल्टा से क्या लेना देना। और माँ चाहे कैसी भी हो, अपनी है तो अपनी है बस, ऐसे ही भगवान अपने है तो है, और संसार बदलने वाला मिटने वाला है तो है बस, जो मिटने वाला है वो मिटेगा और जो रहने वाला है वो तो है ही परमात्मा, जिसको हम कभी नहीं छोड़ सकते, वो तो है। केवल उससे प्रीति और उसकी स्मृति, भगवान के होने से दुख नहीं मिटते, भगवान की प्रीति से सुख मिलता है और भगवान की स्मृति से प्रार्थना से दुख मिटते। तो भगवान की स्मृति और प्रार्थना से दुख मिटाओ और भगवान की प्रीति से सुख और आनंद लाओ, बस। भगवान के ज्ञान से अज्ञान मिटा दो, मैं शरीर हूं ये बेवकूफी हटा दो। आप शरीर होते तो मरने के साथ शरीर को भी ले जाते, शरीर तो यहां छोड़ देते तो आप शरीर कैसे हुए? अब मैं बच्चा हूं, बच्चे होते तो बचपन तो चला गया, तो आप तो हैं। जवानी में जवान हूं, जवानी चली जाएगी फिर भी मैं हूं। मैं बुढ़ा हूं, बुढ़ापा चल जाएगा, मर जाएंगे फिर भी मैं हूं। स्वर्ग में हूं, नरक में हूं, किसी जन्म में हूं, तो मैं तो हूं जो सदा है, था और रहेगा, वो आत्म परमात्मा है। और जो बदलता है वो उल्टा स्त्री कि नहीं बदलता है संसार। अपने घर जाने वाली जो गाड़ी नहीं वो मेरे किस काम की, और जो अपने घर जाने वाली है तो बस हाजिर। जिससे दुख और मुसीबत और जन्म मरण पैदा हो उस रास्ते जाएं क्यों? जिससे सुख आनंद माधुर्य हो उस रास्ते को छोड़े क्यों?